मेरी तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की दौलत, तू ही दिल की दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूँ तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया, ओ तुझ बिलखाए तू जो शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता, तू ही दिल की रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दिल विच बसदी नसदी नसदी नसदी, दिल रोले ते नसदी, रब ने बना दी जोड़ी है, छम आए मुझे तरसाए, तेरा साया छेर के चूमता, ओ तू जो मुस्काए तू जो शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता, तू ही मेरी बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूँ तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ। बसदी बसदी दिल दे दिल विच बसदी नसदी नसदी नसदी, दिल रोवे ते नसदी, रब ने बना दी जोड़ी।
ओम शांति दादी।
ओम शांति दादी।
दादी हम लोगों ने
दादी
वो कहानी सुनी है,
we've heard the story,
जिसमें बताते हैं कि बाबा को शुरुआत में
where they talk about
जब साक्षात्कार होने लगे,
when Baba began to receive visions,
ऐसा भी साक्षात्कार देखा
then he saw such a vision
ऊपर से तारे आ रहे हैं
where he felt that there were stars coming
के नजदीक पहुंचते हैं
were coming descending from up above and coming down
देवी
स्वरूप
धारण करके सृष्टि पर आते और जो उस समय बाबा की बातें हमने सुनी है कि बाबा वो सीन बड़ी सुंदर सीन देखते थे कि देवताओं का आपस में इतना सुंदर कम्युनिकेशन जैसे कि मुख से शब्द नहीं बोल रहे हैं परंतु जैसे कि गीत गा रहे हैं म्यूजिक बजता और जिस समय वो चलते हैं वो जैसे कि उनकी चाल एक जैसे कि रास के तरीके से है तो ये हम बातें सुनते हैं और आपने तो साक्षात्कार इन सभी बातों का किया हुआ है तभी आपसे हम ये प्रश्न पूछेंगे कि आज हमें आप बताएं कि देवताओं की आपस में कम्युनिकेशन किस तरह से होती
ओम शांति अभी आप सभी अनेक बार अपने स्वर्ग के दुनिया में रहे हैं राज किया है और अभी संगम युगी रूप में बैठे हैं तो आप भी याद करो कि हम कलप कलप सत्युग के दुनिया में राजदारी बन करके रहे हैं ना सभी राज अधिकारी बन के सत्युग में रहे हैं ना हाथ उठाओ देखो सभी रहे हैं ये तो सभी अनुभवी होंगे जहाँ राज किया है वहाँ तो अनुभवी होंगे ही फिर भी अभी जो ये क्वेश्चन कर रही है तो वहां क्या है खुशी है बहुत दुख का नाम निशानी नहीं है तो वो खुशी की झलक जो है ना वो चलने में बैठने में उठने में मिलने में वो ऑटोमेटिकली होती है तो जो ऑटोमेटिकली चीज होती है ना वो बहुत सुंदर लगती है थोड़ी बनावटी भी बनाओ तो वो फर्क हो जाता है तो उनकी डायरेक्ट लाइफ ही खुशी की है खुशी भी है और सर्व प्राप्ति स्वरूप भी है तो सर्व प्राप्ति जहां है उस सर्व प्राप्ति का जो फीचर्स पर असर है वो बहुत सुंदर और जैसे होने चाहिए हम समझते हैं ऐसा होना चाहिए वो प्रैक्टिकल वहां का बन है तो हर एक का चेहरा जो चेहरे में हम समझते हैं होना चाहिए वो सब में है और उसमें नेचुरल खुशी है एक होता है कोई बात होती है तो खुशी होती है लेकिन ये जीवन ही खुशी की है इसी कारण उनका कोई जो भी चलन है ना वो न्यारी और प्यारी तो जो ये सुना रही है वो तो कॉमन है वह कोई बनावट भी नहीं है नेचुरल लाइफ ही वो है तो आप सोचो वो कौन थे आप ही थे ना तो आपकी ऐसी लाइफ थी और हर 5000 वर्ष के बाद आपकी ऐसी लाइफ बननी ही है अभी भी बनेंगी, अभी अभी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अभी भी अपने ही सतयुग में जैसे वर्णन कर रही है उससे भी ज्यादा जो भी होगा, खुशी का रूप, तंदुरुस्ती का रूप और सर्व प्राप्ति संपन्न का रूप वो वहां हर देवता का होता है।
तो दादी कुछ कारोबार की जरूरतें नहीं होंगी?
कारोबार है, पढ़ाई पढ़ने जाएंगे बच्चे, लेकिन पढ़ाई क्या होंगी वहाँ, सब ज्ञान तो यहाँ के सारे संगम युग का तो चलता ही है ना, उनका फल है ना, तो पढ़ने में मेहनत नहीं, जैसे खेल होता है, जैसे आजकल पढ़ते हैं लोग तो बोझ समझते हैं ना, वहाँ खेल खेल।
और फिर राज कारोबार जो होता, राज चलाने का जो कारोबार होता,
वो भी ऐसे सिंपल है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा वगैरह है नहीं, जो सोचे क्या करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ये क्वेश्चन ही नहीं है। सर्व प्राप्ति है और सर्व लोग जो है उनके वाइब्रेशन भी वैसे ही शुभ है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, नेचुरल लाइफ ही ऐसी।
तो जिस समय वो एक दो को देखते हैं तो उनों की दृष्टि में क्या होता है, एक दूसरे को किस तरह से देखते?
एक दो को दृष्टि में अपने संबंध से भी देखते हैं, संबंध होता है वो भी देखते हैं, और एक दो को देख करके वाइब्रेशन ऐसा शांति का, सुख का, आनंद का, प्रेम का आता है, जो एक दो को देख करके सब का वायुमंडल ऐसा हो जाता है।
तो ज्यादा साइलेंस का ही कम्युनिकेशन होता?
नहीं, साइलेंस का नहीं होता है, जो कार्य है उसी रीति से एक्शन होता है। समझो स्कूल में जाएंगे तो वहाँ साइलेंस थोड़ी जाएंगे, उसमें उस रूप में जाएंगे, डांस करेंगे तो और रूप में जाएंगे, जैसा समय होगा जैसी एक्ट होंगी वैसे हो। लेकिन खुशी एक नेचुरल है, खुशी चेहरे पे लानी है वो नहीं है, नेचुरल खुशी।
तो बाबा जो कहते हैं एक नेचुरल आत्मिक स्थिति होंगी, तो वो वहाँ का अनुभव आत्म स्मृति का कुछ अलग ही होगा, संगम युग में जो हमें सोचना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, स्मृति को पक्का करना पड़ता है आत्मिक स्मृति का, तो वहाँ पर उन्हों की किस तरह से आत्मिक स्मृति होगी?
जहाँ सोचना पड़ता है वहाँ नेचुरल रूप है, वो सोचना नहीं पड़ता है, भाई खुश रहना है, खुश है ही, यानी नेचर ही खुश है, जिसकी नेचर ही खुश होगी उसको खुश रहना है तो सोचने की जरूरत नहीं।
ये कह सकते कि फिर भी संस्कार सबके पवित्र है, सबके शुद्ध है, सबके श्रेष्ठ है, परंतु क्या संस्कारों की वैरायटी कुछ नजर आएंगी?
वो तो राजा और प्रजा में फर्क तो होगा, लेकिन प्रजा भी जो प्रजा है वो सारी खुश है ना, सारी में सर्व प्राप्ति की वो लहर है, इसीलिए खुशी में कोई में अंतर नहीं होगा, खुश सब होते।
तो संस्कार एक समान नजर आएंगे, कुछ फर्क नहीं या कुछ भिन्नता होगी संस्कारों में?
वो उन जैसे राजा होगा तो राजा ही के संस्कार प्रजा में तो नहीं होंगे ना, वो राजा ही के संस्कार होंगे लेकिन खुशी के वो नेचुरल होंगे.
मानो कि श्री लक्ष्मी है, श्री नारायण है, दोनों के चाल चलन में क्या फर्क होगा?
उनों के चाल चलन में फर्क नहीं होगा, उनकी खुशी, उनका रुआब, उनका वो दोनों में होगा, क्योंकि दोनों ही पुरुषार्थ की प्रारब्ध में है, इसलिए उनों को पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, नेचर है.
तो सब जैसे कि ये भी भेद नहीं रहता कि ये स्त्री है ये पुरुष है,
वो नाले सब है, वो तो क्योंकि वृत्ति दृष्टि में चलेंगे, कारोबार में चलेंगे, तो स्त्री और पुरुष समझो राजा और रानी है, लक्ष्मी नारायण है, तो नारायण तख्त पर बैठेगा, लक्ष्मी थोड़ी बैठेंगे.
लक्ष्मी को अपना तख्त कुछ नहीं है, लक्ष्मी को तख्त कुछ नहीं है अपना,
वो अपनी फैमिली में होंगी ना, तख्त पर तो नहीं होंगे.
सिर्फ नारायण तख्त पर बैठेगा?
नहीं, वो सेरेमनी में बैठेंगे, लेकिन राज्य के समय तो अकेले ही बैठेंगे.
ये आज मैं नई बात समझ रही हूँ दादी.
क्या?
कि अकेला नारायण ही तख्त पर बैठेगा?
नहीं नहीं, जब राज करेगा,
हाँ,
राज कारोबार करेगा, तब तो अकेले ही बैठेगा ना.
लक्ष्मी और नारायण आपस में कुछ डिस्कस करेंगे कि हम
बातचीत करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, क्यों नहीं भाई? आप बनेंगे ना, आपको याद आता है आप बने हैं. क्या खुशी की झलक होंगी, वो तो अभी भी याद करो तो आ जाती है.
आज तक तारी मैं आज तक मैं ये सोचती थी कि हाँ कुछ फर्क होगा जरूर, अवश्य, फिर भी नंबर वन बाप कहेंगे और फिर नंबर टू शब्द शोभता नहीं है, परंतु फिर भी वैसे तो हम कहते हैं श्री लक्ष्मी फर्स्ट, श्री नारायण सेकंड, परंतु फिर भी
नहीं नहीं फर्क. खुशी और मर्तबे में हरेक का मर्तबा नंबर वन अपने अनुसार.
ये अच्छी बात बताई. परंतु दादी ये एक मुझे नई बात लग रही है कि राज करने समय सिर्फ वो एक अकेला ही होगा,
उनके साथ ही होंगे ना.
हाँ,
जो मददगार होंगे राजधानी के काम में
जी,
उस वो तो होंगे ना, लक्ष्मी नहीं होंगी लेकिन साथी तो होंगे ना, अकेला तो नहीं.
तो आज मेरी बुद्धि में एक अभी नई बात आ रही है कि जो बाबा कहते हैं कि आप अपना लक्ष्य रखो लक्ष्मी नारायण बनने का, तो मुझे लगता है कि सिर्फ नारायण बनने का लक्ष्य रखना चाहिए.
नारायण नंबर वन. भले लक्ष्मी नारायण दोनों ही कहा जाता है, फिर भी नंबर वन टू के हिसाब से तो पहले नारायण को रखेंगे.
वैसे कहते हैं कि राज रानी का और हुक्म सरकार का, तो रानी का भी तो कुछ राज तो होगा.
वो तो समानता होती है वहाँ, ऐसा नहीं समझो कोई भी काम है नारायण लक्ष्मी के ऊपर रखता है तो लक्ष्मी भी ऐसा ही करेगी जैसे नारायण. दोनों की बुद्धि की अथॉरिटी तो है ना, कम नहीं होते हैं, दोनों ही में अपनी अपनी शक्ति, अपना अपना संस्कार, अपनी अपनी ड्यूटी, दोनों की अपनी अपनी.
तभी मैं टॉपिक थोड़ा अभी चेंज करती हूँ और प्रश्न ये है कि देवताओं का तो जो कम्युनिकेशन है, जैसे आपने बताया कि एक खुशी का लेन देन एक नेचुरल रीति से चलता, परंतु सूक्ष्म वतन में जब आप जाते हैं वहां पर कम्युनिकेशन किस तरह से होता? वतन में साक्षात्कार में वहाँ कम्युनिकेशन कैसे होता? आप बताते हैं ना कि आज बाप दादा ने बाओं की माला पहनाई, या फिर आप बहुत डिटेल में हमें बताते हैं कि बाबा ने ये कहा, बाबा ने ऐसे बताया, आज आज आज, तो वो आप कैसे समझते हैं कि बाबा ने कैसे आपको बताया?
नहीं, वो दिखाई देता है ना, हम जब सूखे वतन में ध्यान दीदार में जाते हैं तो वो तो सामने जैसे यहाँ दिखाई देते हैं ना, वैसे ही बाबा दिखाई देते हैं। बाबा आया, दूर से देखा तो उठा, मिला, जैसे यहाँ दिखाई देता है वैसे वहाँ भी एक्ट में दिखाई देता है।
जी, परंतु बाबा को जो आपको संदेश देना होता, जो आप फिर हमें आके बताते हैं, तो वो बाबा क्या आपकी बुद्धि को टच करता?
नहीं,
और
नहीं,
वो आप समझ जाते?
बोलते हैं, बात करते हैं बच्ची ऐसे, जैसे समझो बच्ची ये संदेश लाए है इसका उसका, वो जैसे सुन के कोई जवाब देवे ना रूबरू, ऐसे में ऐसे अनुभव होता है।
क्योंकि हमने ये सुना हुआ है कि वतन में साइलेंस में ही, मूवी में ही सब कुछ चलता,
तो लेकिन हम भी मूवी होते हैं ना जानने वाले, तो हमको नेचुरल लगता है।
तो आपको ऐसे ही लगता है जैसे बाबा आपको आवाज से बता रहा है?
जैसे, यानी समझ में ऐसे आता है, भले बोले कैसे भी लेकिन समझ में ऐसे ही आता है जैसे टाक कोई करे। यानी मुश्किल नहीं, ये क्या कहा बाबा ने, ये मतलब ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो नहीं चलता है, जैसे नेचुरल हम सुन रहे हैं बाबा बोल।
तो ये कहें कि बुद्धि की लाइन आपकी बाबा के साथ ऐसे क्लियर जुड़ी हुई है कि बाबा के पास जो संकल्प आता वो आपको तुरंत ही पहुंच जाता?
नहीं, मैं भी तो परिवर्तन हो जाती हूँ ना
जी,
मैं खुद भी तो परिवर्तन हो जाती हूँ ना, फरिश्ता बन जाती हूँ ना, तो नेचुरल लाइफ हो जाती हूँ फरिश्ते रूप में, मैं भी तो आकारी हो जाती हूँ ना
जी,
तो आकारी को आकारी की बात समझना तो इजी होती है। आप सभी को अनुभव करना है तो अमृत वेले आप बैठ के एक बारी चक्कर लगा के आओ।
बाबा सबकी बुद्धि को खींच लेगा?
हाँ,
बाबा सबकी बुद्धि को खींच लेगा
यथाशक्ति होगा ना। जितनी जितनी पावरफुल अशरीरीपन की अवस्था होंगी उतना ही कैच कर सकेंगे ना।
दादी, अभी संगम युग की दूसरी बात पूछते हैं कि अभी यदि हमें देवता
बनना है
तो अभी हम किस प्रकार से अपना पुरुषार्थ करें जो हमको अभी से ही गारंटी हो अपने लिए चाहे दूसरे के लिए कि हाँ ये देवता पद प्राप्त करने वाले हैं, तुम्हारी कम्युनिकेशन में किस तरह का होना चाहिए?
नहीं, मैं तो समझती हूँ देवता से भी पहले अबीज का जो हमारा स्वरूप है ब्रह्मांड का, देवताओं से ऊंचा है, और अभी डायरेक्ट परमात्मा हमसे मिल रहा है, हमसे बोल रहा है, वहाँ तो वो होंगे ही नहीं, तो अब भी हमारा ब्रह्मांड रूप जो है वो सबसे सारे कल्प में श्रेष्ठ जन्म अगर हम देखें तो ब्रह्मांड जन्म है।
तो आज हमारी कम्युनिकेशन आपसी कैसे होनी चाहिए दादी?
हमारी का वो ही होना चाहिए जो अगर हम किससे मिलते भी है तो इस समय भले ब्रह्मांड रूप में है लेकिन ब्राह्मण फरिश्ते है, फरिश्ते फिर देवता है, ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए कि किससे मैं मिल रही हूँ, ये कौन सी आत्मा है, उसके आत्मा का क्या अभी क्या है, भविष्य क्या है, वो बुद्धि में ऑटोमेटिकली आना चाहिए और उसी रुहाब से मिलना चाहिए एक दूसरे। साधारण नहीं भाई, ये फलानी है फलानी है फलानी का, फिर वो संस्कार भी सामने आ जाता है, ये ऐसी है वैसी है। अगर फरिश्ते रूप में देखे तो फिर ये नहीं है।
अभी बाकी कुछ घंटे की ही देर है जबकि हम आपके द्वारा बाप दादा से मिलन मनाएंगे, तो हम अभी से लेकर कल शाम तक कौन सी विशेष बात ध्यान पर रखें अथवा अभ्यास करें?
ये अशरीरी बनने की, बाबा जो है वो अशरीरी रूप में सूक्ष्म झोले में आएंगे, तो हमको भी ऐसे ही अपने फरिश्ते रूप के स्वरूप में रहना चाहिए और बाबा फरिश्ता हम भी फरिश्ता, फरिश्ता फरिश्तों में मिलन होगा।
जी दादी, आपको और कुछ हमें ध्यान पर देना हो अभी?
मैं तो ये समझती हूँ कि सबसे श्रेष्ठ जीवन जो है हमारी सारे कल्प में अभी की है। भले सत्युग में भी बनेंगे हम, राजा रानी भी बनेंगे, सब बनेंगे, लेकिन इस समय के ब्रह्मण जीवन का जो महत्व है हमारा, वो सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन ब्रह्मण जीवन, क्योंकि अभी परमात्मा आत्मा का स्पष्टीकरण है। हम आत्मा परमात्मा से मिल रहे हैं, परमात्मा हमको ज्ञान सुना रहा है, तो अभी परमात्मा और आत्मा का नाता है। वहां तो फिर भी राजा रानी है और उनका नाता हो जाएगा, लेकिन इस संगम युग में जो हमारे को परमात्मा का स्वरूप मिला है, मिलन मिला है, बातें करना मिला है, सर्व संबंध निभाना मिला है, वो सत्युग में भी नहीं होगा। यही संगम युग है जिसमें हम नॉलेज से परमात्मा से मिलते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को सुना रहा है, इस समय से मिलती है, फिर तो सारे कल्प में नहीं होगा। संगम युग तो सबसे श्रेष्ठ है। एक एक सेकंड संगम युग का वैसे देखे तो एक सेकंड क्या है, बरसों समान। हम समझो उसको हल्का कर देते हैं तो एक सेकंड नहीं गमाया लेकिन एक वर्ष गमाया। संगम युग का इतना महत्व है क्योंकि परमात्मा के रूप से हम आत्माएं मिले परमात्मा से, वो और कोई युग में नहीं। सतयुग में तो देवता रूप में होंगे लेकिन अभी आत्मा परमात्मा के रूप में हम समझते हैं, हम आत्मा को परमात्मा मिला है और परमात्मा ज्ञान दे रहा है सारे कल्प का। अभी आत्मा परमात्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा का परिचय और संबंध का सुख लेना, वो अभी है, फिर सारे कल्प में नहीं।
थैंक यू दादी, आपने अच्छी बातें बताई भविष्य के भी, परंतु साथ साथ अभी हमें किस प्रकार की बातें ध्यान पर रखनी है वो भी बहुत सुंदर बातें बताई। और विशेष तो मैं कहेंगे कि हम अपनी स्थिति किस तरह से बना करके रखें।
अभी संगम युग का फायदा अभी जितना लेना चाहिए हमको उतना लेना चाहिए, नहीं तो संगम युग तो है ही छोटा सा युग और इसमें परमात्मा परमात्मा रूप में हमसे मिलता है। पहचान से हम कहते हैं हाँ परमात्मा हम आत्माओं से मिलता है। सारे कल्प में आत्मा परमात्मा का मिलन होता ही नहीं। इस समय का संगम युग का एक एक समय जो है वो महान है। ये तो फिर सारे कल्प में नहीं मिलेगा। परमात्मा हम आत्माओं से बात कर रहा है, ऐसा भाग्य तो कोई युग में नहीं।
थैंक यू दादी। अभी बाबा की याद में भी बैठते हैं, परंतु साथ साथ कुछ बाबा के बच्चे रशिया के आए हुए हम सबके सामने सत्यु की रास की सीन दिखाएंगे। दादी ओम शांति।
ओम शांति. अभी हम सब तीन मिनट बाबा की याद में बैठते हैं. आफ्टर मेडिटेशन दादी विल टेक लीड.
स्वर्णिम युग है सर्वगुणों की खान.